नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 27। अस्ति
अस्ति
यज्ञपति
यज्ञपति
नाम
नाम
केशांचित
केशांचित
अर्हसत्तमाह
अर्हसत्तमाह
इह
इह
अमुत्र
अमुत्र
च
च
लक्ष्यन्ते
लक्ष्यन्ते
योत्सावत्यः
योत्सावत्यः
क्वचित्
क्वचित्
भुवः
भुवः।
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
केषाञ्चित् अर्हसत्तमाः
केषाञ्चित् अर्हसत्तमाः
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
ज्योत्स्यावत्यः क्वचित् भुवः
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः।
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
केषाञ्चित् अर्हसत्तमा
केषाञ्चित् अर्हसत्तमा
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः।
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
केषाञ्चित् अर्हसत्तमा
केषाञ्चित् अर्हसत्तमा
इहामूत्र च लक्ष्यन्ते
इहामूत्र च लक्ष्यन्ते
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः।
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
अस्ति यज्ञपतिर्नाम
केषाञ्चिदर्हसत्तमा
केषाञ्चिदर्हसत्तमा
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः।
अस्ति
अस्ति
है यज्ञपति ही
यज्ञपति ही
समस्त यज्ञों का भोक्ता
समस्त यज्ञों का भोक्ता
नाम
नाम
नामक
नामक
केशांचित
केशांचित
कुछ के मत से
कुछ के मत से
अर्ह सप्तमाह
अर्ह सप्तमाह
हे माननीय
हे माननीय
इह
इह
इस लोक में
इस लोक में
अमुत्र
अमुत्र
मृत्यु के बाद च
च
भी लक्ष्यन्ते
लक्ष्यन्ते
दृष्टिगोचर
हैं
ज्योत्स्नावत्यः
ज्योत्स्नावत्यः
शक्तिमान
शक्तिमान
सुंदर
सुंदर
क्वचित
क्वचित
कहीं कहीं
कहीं कहीं
भुवः
भुवः
शरीर
शरीर।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद माननीय देवियों तथा सज्जनों शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके, अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं? तात्पर्य, अभी तात्पर्य बहुत लंबा है, 5.5 पन्नों का है, इसलिए हम शायद 1 या 1.5 पन्ना मैं पढ़ूंगा, उसके बाद अगले वाले कल परसों जो भी क्लास देंगे, कक्षा देंगे, वो आगे तात्पर्य से बढ़ना, इसी श्लोक को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब इतना पढ़ना मेरे गले के लिए हो जाएगा, कौन पढ़ेगा?
तात्पर्य, ऋतु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना था। चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः वहां विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक नहीं थे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि ऋतु महाराज ने नागरिकों को अदोक्षज दीयह अर्थात कृष्ण भावना भावित बनने की सलाह दी थी, और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासन च्युत किया था वरन शाप देकर मार डाला था। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा देव योग के कारण हुई मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि मिश्रण की कतिपय परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष रूप में प्रकट होता है, फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती है। नास्तिक लोग वेदों के आदेशों की भी नहीं मानते, वेदों के आदेशों को भी नहीं मानते। उनके अनुसार सभी वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत है जिनका जीवन में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। नास्तिक लोग अस्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती है, किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि संप्रति तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं, पर वे यह मानने को तैयार नहीं कि ये सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए है। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानता वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य मतानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का यह सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, जो ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक होता है। नास्तिकों तथा मायावादियों द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवद गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवद गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। ठीक है,
तो कल से तात्पर्य बाकी का तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं कल। बुलंद आवाज में पढ़ा ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भागवत क्लास सुनने के लिए तैयार है पिज्जा खाने के बाद? आज राधा कुंज बिहारी प्रभु ने पिज्जा बनाया सबके लिए। गोलोक वृंदावन का पिज्जा, इटली का नहीं। तो पृथु महाराज यहाँ पर अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और पिछले श्लोकों से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मूल उपदेश क्या है कि राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रजा को सेवा में लगाना चाहिए, तरह तरह के कार्यों में। सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है, तो अपने प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार ये वर्ण का विभाजन होता है। तो राजा को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके द्वारा अपने प्रवृत्ति के अनुसार हर एक व्यक्ति संसार में कार्य कर सके। और यदि राजा ने ऐसे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य नहीं किए और केवल कर वसूल किया प्रजा से, तो फिर प्रजा के जो पाप कर्म हैं उनका फल राजा को भी भुगतना पड़ेगा। प्रजा के पाप कर्मों में के फल में राजा भी भागीदार बन जाएगा। तो नेता बनना, राजा बनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति आलसी नहीं होना चाहिए, हर एक को अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य में रत रहना चाहिए, तो इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और पृथु महाराज ये भी बतलाते हैं कि इन सब का उद्देश्य है कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। कौन सा श्लोक बता सकते हैं? वर्णाश्रम से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
वर्णाश्रम विचार होता पुंसान पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पंत नाने तत्वोष कारण।
क्या मतलब इसका?
वर्णाश्रम आचार मनुष्य को वर्णाश्रम का आचरण करना चाहिए पुरुषेण पर पुमान मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए।
विष्णु आराध्यते पंथा तो विष्णु की आराधना, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान, जो जो पुमान मतलब
मनुष्य,
तो हरेक व्यक्ति को जो भी मनुष्य है उसे चाहिए कि वो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे और इनके द्वारा विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यत तत्तोष कारणम, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का और कोई भी मार्ग नहीं है सिवाय वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। अभी ये सही तो है, परंतु इस श्लोक में दो बातें बताई गई है। कौन सा? एक के वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरा विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात सुनी रामानंद राय के द्वारा, तो साध्य साधना के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछे कि इस जीवन में अंतिम उद्देश्य क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है। तो सबसे पहले रामानंद राय ने यही श्लोक बोला था और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा?
इहो बाह्य।
इहो बाह्य, बाह्य मतलब
बाह्य चीज,
ये बाह्य चीज है। तो क्या ये चैतन्य महाप्रभु विष्णु पुराण को नहीं मानते थे? वेदों के श्लोकों को ही उन्होंने नकार दिया? चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही है ना, फिर क्या इसका तात्पर्य? क्यों महाप्रभु ने कहा कि हो बाह्य?
प्रचार के हेतु आगे चल के रिकॉर्डिंग होगा और सबको पता चलेगा कि उच्च चीज क्या है, इसलिए कृष्ण प्रेम तक तो
नित्य धर्म ये शरीर के स्तर पे बहुत जरूरी है हमारे लिए। आत्मा के नित्य धर्म की आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उतना महत्वपूर्ण है, नैमित्तिक बन जाता है।
वैसे वर्णाश्रम धर्म का कोई संबंध भक्ति से नहीं है, ये वाक्य का सही है?
नहीं
अभी जनानंद पुकारना
देवी वर्णाश्रम
नहीं, साधारण वर्णाश्रम में भी तो वर्णाश्रम धर्म के कार्यों में भी भगवान विष्णु की भक्ति भी आती है। कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें विष्णु के भजन के लिए भी बताया गया है,
लेकिन उद्देश्य सीधे सीधे भक्ति नहीं है।
आपको याद है हमने एक बार यहाँ पे विस्तार में चर्चा की थी साधारण वर्णाश्रम धर्म दैवी वर्णाश्रम धर्म ये क्या है, याद है आदिरस प्रभु? याद है कई महीने पहले? हाँ, सब लोग बोले थे हाँ अभी सब समझ में आया कि वर्णाश्रम धर्म दैवी वर्णाश्रम धर्म क्या है। बराबर, तो साधारण वर्णाश्रम धर्म में उद्देश्य ये होता है कि अंततः व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति तक पहुंच जाए और थोड़े बहुत भगवान विष्णु के सेवा के कार्य होते हैं। परंतु वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों में बहुत सारे अन्य कर्तव्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि पितरों की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, अतिथियों की सेवा करना, है ना, और मनुष्यों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, तरह तरह की चीज़ें होती हैं और उसमें विष्णु की सेवा भी करना है। तो यद्यपि इसका उद्देश्य ये है कि धीरे 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 से व्यक्ति की चेतना को उठाया जाए क्रमशः, ताकि अंततः अनेक जन्मों के वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बाद व्यक्ति सीधे इस स्तर पर पहुंचेगा कि वो केवल भगवान विष्णु की सेवा कर सके। परंतु ये बहुत लंबा रास्ता है। इसमें भगवान विष्णु की सेवा की बात अवश्य की गई है, परंतु अन्य इतने सारे और बातें होने के कारण भगवान विष्णु की भक्ति की जो प्रधानता है वो इतने सामने उठकर नहीं आती है। इसलिए जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, आजकल तो कोई नहीं करते, लेकिन वैदिक काल में भी जो लोग करते थे उनके लिए हर बार इतना स्पष्ट नहीं होता था कि हमारे जीवन का उद्देश्य विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति है। वो ज़्यादा कर्मकांड की दृष्टि से ज़्यादा चलते थे कि हमको संसार से भी कुछ लेना चाहिए, धर्म अर्थ काम उस स्तर पर वो पहुँचते थे। ये चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म कौन सा धर्म है? भक्ति धर्म है, ये भौतिकतावादी धर्म है, कर्मकांडीय धर्म है, सुख करता दुख हरता वाता निन्ना चीने, ये क्या है? शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति है कि नहीं? क्यों नहीं है? इसमें हम एक तो भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, दूसरी बात हम चाहते हैं भौतिक, हमको सुख दीजिए, हमारे जीवन से दुख निकाल लीजिए, और क्या प्रार्थना करते हैं, क्या क्या चाहिए हमको, यानी काय पाहिजे आम्हाला, काय प्रार्थना करतो आम्ही, ऐसी प्रार्थना और क्या चाहते हैं?
ना धनम ना जन्म वो सभी ना निकाल के धनम जन्म।
तो हम संसार की चीजों को जब मांगते हैं वो कर्म कांड हो जाते हैं, वो धर्म का वाहन इस्तेमाल करते हैं, परंतु भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए कम से कम उतना तो कर रहे हैं। फिर भी इतनी सारी चीजें होने के कारण भगवान विष्णु की बात जो है थोड़ी पीछे रह जाती है। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया, इसमें जो धर्म शब्द है ये कर्मकांडीय धर्म है या सकाम कर्म वाला धर्म है, जिसमें हम कोई अपने भौतिक कार्यों के फल की कामना करते हैं और इसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसे धार्मिक कार्यों से हम क्या चाहते हैं? अर्थ, धन चाहते हैं। ऐसे धन से धन का प्रयोग कैसे करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए। तो ये जो साधारण वर्णाश्रम है ये धर्म अर्थ काम के स्तर पे है। उसके बाद रामानंद राय ने जब क्या बोला, जब महाप्रभु ने बोला एहो बाह्य, फिर उसके बाद कौन सा श्लोक बोला रामानंद राय ने? तो ये पिछले वाले श्लोक से श्रेष्ठ कैसे हो गया?
धर्म सबको वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग के केवल भगवान के शरण में आ जाओ, क्योंकि मुख्य अंग बन जाता है भगवान का शरण।
ठीक है, ठीक है, और फिर महाप्रभु ने क्या कहा? यही सही है, सही है कहा?
इहो बाह्य
बाह्य। अरे ऐसा क्यों कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम तो सुनते हैं कि तो भगवद गीता का सार है, तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे क्यों कहा? फिर सर्वधर्मान परित्यज्य सुन के भी उन्होंने एहो बाह्य कह दिया, ऐसा क्यों? क्या कारण?
भक्ति मंत्र प्रारंभ होता है, इसके अभी बहुत जाना है इसमें।
और ये वैराग्य संन्यास का पथ है, सबको त्यागना। सबको जब हम त्यागते हैं तो ऐसे त्यागने से ये मोक्ष की ओर फिर हम जाने लगते हैं। पहले धर्म अर्थ काम था, अभी मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से ये भी बाह्य है, क्योंकि भले हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, पाप से मुक्त होने के लिए जाते हैं, ये कोई आंतरिक चीज है। भगवान के शरण में जाते हैं क्यों? पापों से मुक्त होने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए। तो ये भी थोड़ा ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान कर्म मिश्रित है सब। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे से प्रभुपा रामानंद राय पहुंचे शुद्ध भक्ति के अवस्था में। तो शुद्ध भक्ति में वर्णाश्रम आदि का कोई विचार नहीं रहता है, केवल भक्ति, केवल भगवान कृष्ण की सेवा। चाहे किसी का कोई भी वर्ण क्यों न हो, कोई भी आश्रम क्यों न हो, परंतु क्योंकि साधारणतः समाज में हम केवल कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, हम हरिदास ठाकुर नहीं हैं, इसलिए हमको परिवार को संभाल के चलना है, हमको व्यवसाय कर संभाल के चलना है, और आश्रम में अपने नियमों का पालन करके चलना है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें वर्णाश्रम धर्म के थोड़े बहुत नियमों का सहारा लेना पड़ता है, और इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अपने तात्पर्यों में कहते हैं कि दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वधर्म होते हैं। ये दो प्रकार के स्वधर्म कौन से हैं?
शरीर का और आत्मा का।
शरीर का और आत्मा का। स्व मतलब क्या? स्व मतलब स्वयं, खुद अपना। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शारीरिक स्तर पे कुछ धर्म होना चाहिए, और है हम आत्मा तो आत्मा के स्तर पे भी कार्य होने चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए। जब व्यक्ति हरिदास ठाकुर के स्तर में होता है तो वो केवल आत्मा के धर्म का पालन करते हैं, परंतु हम लोग हरिदास ठाकुर के स्तर पे नहीं हैं और फिर भी भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए शारीरिक धर्म और आत्मा के धर्म दोनों का पालन करना चाहिए, परंतु उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि उद्देश्य है कि हमें संसार में भोग करना है। थोड़ा निकल गया मुंह से, गलती से निकल गया। तो इसका मतलब है सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो इस प्रकार से क्रमशः जब ये उदाहरण भी हमने पहले दिया, यदि हम बहुत ऊंचे इमारत में चढ़ना चाहते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते बहुत समय लग जाएगा, परंतु यदि हमने लिफ्ट ले लिया तो बटन दबाया सीधे ऊपर पहुंच गए। तो शुद्ध भक्ति का रास्ता वैसे है, उत्तमा भक्ति, परंतु हम उस स्तर पे नहीं है इसलिए सहारा लेते हैं। हम लिफ्ट में जाते हैं लेकिन लिफ्ट बीच बीच में रुकता है, थोड़ी धीमी गति से जाता है लिफ्ट, लेकिन है। तो हमारे साधन भक्ति में, हमारे दैवी वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है साधारणतः? वैसे तो एक लिफ्ट में बैठ गया तो सीधा ऊंचा जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, परंतु कभी कभी हम भी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं ना, तो लिफ्ट रोक देते हैं, फिर इधर उधर जाते, पहले माले पे क्या है देखते, फिर दबाते हैं दूसरे माले पे, दूसरे माले में चढ़ के फिर अरे पहले माले में क्या था देखते ही फिर से वापस आ जाते हैं। ऐसे लिफ्ट में हमारा आना जाना रहता है। वैसे यदि कोई लिफ्ट के अंदर जाए, सीधा बटन दबाए, कुछ करे, सीधा पहुंच जाएगा। तो हम भक्ति योग के पथ में हैं, और भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें ये है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए केवल क्या करना चाहिए, नवविधा भक्ति करनी चाहिए प्रहलाद महाराज के अनुसार। परंतु जो व्यक्ति भगवान के इस बनाए हुए व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं या इनमें विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, तो फिर नारकीय गति ही होगी उनकी। यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं, अपने सभा में जितने भी भक्त हैं या आस्तिक लोग हैं उनको कह रहे हैं, और जो नास्तिक लोग हैं ताकि उनको भी खुद उपदेश मिल जाए, वो बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, कर्म मीमांसा जो सिद्धांत है उसका खंडन करते हैं और नास्तिकवाद का खंडन करते हैं। नास्तिकवाद क्या है, जिसमें वो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि भगवान ही नहीं है। और कर्म मीमांसा क्या है, जिसमें वो कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे, परंतु भगवान नहीं है तो कौन फल देगा, कर्म का फल मिलेगा। तो पृथु महाराज बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम कर्म करते हैं और आप कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हो और कर्म का फल मिलता है, तो कर्म का फल देने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, तो वो है भगवान। इसलिए यहाँ पर भगवान बताते हैं, पृथु महाराज बताते हैं, कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। हमने अच्छे काम किए अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया बुरा फल मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत को संचालित करने के लिए इसके किसी के निर्देशन में तो ये सब चलना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, ये अपने आप सब नियम हो जाते हैं क्या। ऐसे भारत में भी कई वर्ग हैं, धार्मिक वर्ग हैं या पंथ ऐसे हैं जो कर्म मीमांसा सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है परंतु कर्म सिद्धांत है। आपने सुना होगा ऐसे कई होते हैं, कर्म के ऊपर बहुत जोर देते हैं, अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, परंतु भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, क्यों, कर्म ही सब कुछ। भगवद गीता का सार क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते, महाफलेषु कदाचन भी नहीं, वो भी नहीं मालूम उनको, इतना ही पता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है कर्म करने के लिए। तो कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी मिलता है, तो कर्म का फल देते कौन है, ये इतनी सरल सी बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि यदि हम कोई रास्ते में जा रहे हैं, कोई लाल बत्ती है जिसपे क्या गाड़ी रोको, तो गाड़ी नहीं रोकेंगे तो दंड मिलेगा, तो कोई दंड देने वाला होना चाहिए कि नहीं, कोई इस नियम को बनाने वाला भी होना चाहिए कि नहीं। ऐसे नहीं है कि अपने आप लाल बत्ती का नियम हो गया और हम लाल बत्ती पार करके गए अपने गाड़ी में तो अपने आप ही दंड मिलेगा, अपने आप कुछ होता है क्या। राधा कुंज बिहारी प्रभु पिज्जा अपने आप बन गया क्या, नहीं ना, देखो कितना परिश्रम किया राधा कुंज बिहारी प्रभु ने हम सबके लिए पिज्जा बनाने के लिए, और कोई बने कहेगा कि नहीं अपने आप हो गया, तो फिर कर्म सिद्धांत तो अपने आप कैसे काम कर सकता है। कोई सिद्धांत बनाने वाला चाहिए, नियम, और उसका उसको उसका पालन करवाने वाला कोई चाहिए, दंड देने वाला या पुरस्कार देने वाला। गोवर्धन लीला के पहले भगवान कृष्ण ने ऐसे जानबूझकर कर्म मीमांसा सिद्धांत को कहा। कौन बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौन सा ये गलत सिद्धांत कैसे कहा और क्यों कहा? कौन बताएंगे? क्या संदर्भ था वो? हाँ अक्षय,
ब्रजवासी सब इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, इंद्रदेव के लिए यज्ञ कर रहे थे,
तैयारी कर रहे थे।
तो कृष्ण सबको बुला, नंद महाराज और वरिष्ठ गोपों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही है, तो इंद्र बाध्य हो जाते हैं अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं तो अलग से उनके लिए यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कि हम गोवर्धन के लिए यज्ञ करें।
वो बाद में उन्होंने बोला गोवर्धन की बात, लेकिन पहले क्या बोला, इंद्र कौन होते हैं? इंद्र तो वर्षा देंगे, लेकिन कब देंगे? हम वैसे कर्म करेंगे तो वर्षा होगी, इसमें इंद्र का क्या लेना देना? इंद्र भी बाध्य होते हैं, इन्होंने ऐसे प्रकार के कर्म किए और मुझे वर्षा देनी होगी, तो फिर इंद्र की क्या भूमिका इसमें? तो सब कुछ क्या प्रधान है? प्रधान है
कर्म,
कर्म प्रधान है। तुम कर्म करो फिर सब आ जाएगा, ना इंद्र है बीच में, ना कोई भगवान है, ना कुछ, कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर ऐसे झूठ बोला क्या? क्यों भगवान ने ऐसे किया? शास्त्रों के विरोध में क्यों बात किया भगवान ने?
इंद्र थोड़े गर्वित हो गए थे।
नहीं, नंद महाराज को इस तरह से झूठ क्यों बोला भगवान कृष्ण ने? गलत बात क्यों कही? वो नंद महाराज को ये न के न प्रकार रोकना चाहते थे कि आप इंद्र की पूजा नहीं करो, क्योंकि इंद्र वगैरह वो पुरानी प्रथा थी, कई वर्षों से ब्रजवासी ऐसे करते आए थे, इसलिए बोला कि हम लोग ग्वाले हैं, गोप समाज है हमारा, हम गाय बैल चराते हैं, इससे हमारे जीविका आजीविका होती है, तो गाय जो है वो चरते हैं, और वो किस पे चरते हैं? घास खाते हैं, वो घास कैसे उगता है ज़मीन में जब बारिश होती है? तो बारिश कौन देते हैं? इंद्र देते हैं, तो हमारी जो आजीविका है वो इंद्र के ऊपर निर्भर है, इसलिए इंद्र को संतुष्ट करना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी उस समय। और कृष्ण ने आके क्या कहा? इंद्र की जरूरत नहीं, कोई भगवान की जरूरत नहीं, क्या करो, कर्म करो, सब मिल जाएगा। अब ये बाद में उन्होंने क्या कहा, इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि यहाँ के जो इतने कंद मूल हैं और यहाँ के औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, घास है, इसको खाते हैं गाय और हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम गोवर्धन के ऊपर हम निर्भर हैं, गोवर्धन तो हमारे सामने है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने किसी न किसी तरह से ब्रजवासियों को इंद्र पूजा से दूर करके गोवर्धन की पूजा करवाने की इच्छा की, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसे किया। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, यदि कोई गलत सिद्धांत जो वेद शास्त्रों के विरोध में है, यदि ऐसा सिद्धांत स्वयं भगवान भी बोले तो उसको नहीं मानना चाहिए। यदि कौन बोले, भगवान भी शास्त्रों के विरोध में कुछ बात है बोले तो हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये भगवान के ये गलत बोलने के पीछे उद्देश्य था, ये इसलिए ये वास्तविक उद्देश्य उनका नहीं था, ऐसे हमें समझ लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, कि कैसे स्वयं भगवान ने कुछ गलत सिद्धांत को स्थापित किया, वो क्या है? बुद्ध देव। बुद्ध देव ने कौन सा दर्शन स्थापित किया? शून्यवाद और नास्तिकवाद। नास्तिकवाद अर्थात वेद शास्त्र में हम विश्वास नहीं करते हैं, वेदों को टुकरा दिया उन्होंने, नकार दिया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था पशु हत्या बंद करना। क्योंकि कई ब्राह्मण आदि थे, उन्होंने ये यज्ञ आदि के जो विधानों का दुरुपयोग किया था। तो जब बुद्ध देव ने आके कहा कि ऐसे हिंसा बंद कर दीजिए, पशु हत्या बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे वेदों में ऐसे लिखा है। तब बुद्ध देव ने क्या कहा? आपके वेदों को मैं नहीं मानता। और बुद्ध देव भगवान के अवतार हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं। तो भगवान के अवतार आके कहते हैं मैं वेदों को नहीं मानता। तो फिर उन्होंने अपना धर्म शुरू कर दिया। तो हमें क्या बुद्ध देव को मानना चाहिए? उन्होंने कहा कि वेद नहीं मानते हम, तो हमें भी कहना चाहिए कि वेद सही नहीं है। तो चाहे भगवान भी आके बोले कि वेद सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि वेद क्या है? वेद भी तो भगवान ही है, भगवान का ही रूप है। वेद नित्य है, शाश्वत है। भगवान के विभिन्न अवतार आते हैं जाते हैं, उनके विशेष कोई कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको संपन्न करके भगवान चले जाते हैं, लेकिन वेद हमेशा रहते हैं। किसी कार्य विशेष के लिए, उद्देश्य विशेष के लिए भगवान कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, परंतु मूल भगवान की बातें वेदों के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि भगवान की मूल जो इच्छाएं हैं वो वेदों में व्यक्त हैं, उन्होंने किए हुए हैं। तो बुद्ध देव ये गलत बातों को भी हम नहीं मानते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ तात्पर्य में, कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो बुद्ध देव के अनुयायी थे उनकी निंदा की, बौद्ध दर्शन का खंडन किया, परंतु बुद्ध देव की निंदा नहीं की। क्योंकि बुद्ध देव ने ऐसे गलत दर्शन भी किया तो क्यों किया? एक उद्देश्य के लिए किया। कौन सा उद्देश्य था? वेदों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कैसे दुरुपयोग हो रहा था? पशु हत्या। तो इसलिए चाहे भगवान हो, भगवान के अवतार हो, वो भी कुछ वेदों के विरुद्ध कोई बात बोले तो हम उनकी बात भी नहीं मानेंगे। वेद प्रधान है, शास्त्र प्रधान है, और शास्त्र कहाँ से आते हैं?
भगवान
से आते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ऐसे जब भगवान बात करते हैं तो क्यों बात करिए। दो प्रमुख उदाहरण है कि जब हमें भगवान की बातों को नहीं मानना चाहिए। गोपियों ने भी नहीं बात मानी भगवान की, जब उनके पास आए थे भगवान ने बहुत कहा उनसे, अरे कहाँ आ गए, ये नीति के विरोध में है। परंतु गोपियाँ नीति के परे हो चुके थे, नैतिक अनैतिक उनसे क्या संबंध। ये नैतिक अनैतिक के ऊपर पहुंच गए थे, वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेमी बन गए थे। तो इसलिए उस समय गोवर्धन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने ये कर्म मीमांसा सिद्धांत बताया था, जिसमें क्या बताया जाता है?
कर्म प्रधान।
कर्म प्रधान और भगवान
नहीं।
तो यदि आपको कोई पूछे कि कोई ये कर्म, हम मानते हैं कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान में क्या, बस अच्छा कर्म करो, तो आप क्या उत्तर देंगे उसको?
कर्म के फलों को देने वाले और वहाँ पे जो सही गलत का निर्धार करने वाले भी कोई चाहिए, वो और कर्म के कर्म सिद्धांत को जो निर्माण किया है वो व्यक्ति भी होना चाहिए, अपने आप कर्म के फल नहीं आते।
अच्छा, ये पहले ये कई लोग बोलते हैं कर्म सिद्धांत भी ज्यादा उनको नहीं पता है, तो साधारण बोलते क्या अच्छा कर्म करो, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं? ये भगवान में विश्वास नहीं करते, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, बस अच्छे कर्म करो, फिर आगे धीरे धीरे हम कर्म सिद्धांत के ऊपर आते हैं, फिर भक्ति में आते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अच्छे कर्म को। तो यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके पहचान वाले कोई है, पुराने मित्र है, रिश्तेदार है, आप उनको बोलते हो हरे कृष्ण जप करो करो, ये मानत नहीं, चांगले कर्म के लिए पाजे हमें बस तेवड़च, अच्छे कर्म करने चाहिए, तो क्या उत्तर दोगे, कैसे समझाओगे?
अच्छा बुरा कैसे निर्णय करोगे?
हाँ ठीक है, और आप में से कोई बोलो,
अच्छा क्यों करना चाहिए?
अच्छा क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या? तुरंत आपको बोलेंगे आप हरे कृष्ण भक्तों के ऐसे बोलते हो, ऐसा कैसे बोलता तुम्हें, वाइट काम के लिए पाजे हमें, ऐसा कैसे बोलता तुम्हें? तो आप बोलो, आप ऐसे कोई बोलो, आमटे के बहुत सारे भक्त आए आज, आमटे में कोई आपको मिला, कोई नौजवान?
हाँ, मुझे ऐसा एक आदमी ने पूछा, मैं उनको बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो ऐसा ही बोला उसने कि हम जप वगैरह कुछ ये करते नहीं हैं, हम बस जैसा कि आपने बताया अच्छे कर्म करना चाहिए।
हाँ,
तो मैं उनको बोला कि अच्छे कर्म करना ये भी जरूरत है, लेकिन जब आप महामंत्र जपेंगे तब आपका मतलब आध्यात्मिक ये शुरू हो जाएगा, भक्ति शुरू हो जाएगा।
ये आध्यात्म में क्या है? आध्यात्म में कौन ही बगित ले देव है?
तो उसको मैं बताया कि आप अच्छे कर्म रहे हैं, आपको मतलब अगले जन्म में आपको कुछ ये हो जाएगा, इससे भी जब अपने कर्म किया है तो अगला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा।
कौन ही बगित ले पुरुष जन्म एक जन्म है आमच, जन्म घेतो आम्ही, मृत्यूच्या नंतर सगळं संपतंय, हे सगळ्या काल्पनिक गोष्टी तुम्ही मला का सांगता? माझा सिद्धांत काय आहे, चांगले कर्म कर, तर याचं उत्तर काय देणार तुम्ही, कोण बोलणार, बोलो कोई।
चांगला आणि वाईट याच्यामध्ये काय अंतर आहे पहिला समजून, चांगला आणि वाईट जे कार्य करायला लागलो हे बरोबर आहे की चूक आहे किंवा वाईट आहे की चांगलं आहे हे समजून घेण्यासाठी आम्हाला वेदाकडे
किंवा सर्वप्रथम आम्हाला हे जाणून घेतलं पाहिजे, मराठी सबको आते ना दादा कुंजी बिहार प्रभू मराठी समजते, गोपाल भट्ट प्रभू मराठी समजते, वृंदावन भाई मामे उद्धव हरी आता है ना, स्पर्श सीख लिया, समझ लिया, चांगलं काय आहे वाईट काय आहे ते कोण निर्णय करणार? जो मादक द्रव्यांचं सेवन करतो, म्हणजे तुमची साधारण भाषामध्ये काय, जो दारू पितो त्याला वाटतं की हे बरं काम आहे, तर त्याला कसं तुम्ही समजणार की हे बरं नाही आहे वाईट आहे? तो म्हणतो नाही मला माझ्या मतानुसार हे बरं आहे, तर पियायचं ठीक आहे, खायचं ठीक आहे। तर जे म्हणतात की आम्ही चांगलं काम करणार, तर तुमची परिभाषा काय आहे चांगल्या शब्दाची, चांगलं म्हणजे काय, वाईट म्हणजे काय? अभी क्या होता है ना, लोक ज्यादा गहराई में सोचते नहीं, वो बस बोल देते, क्योंकि इतना गहराई से सोचने की आदत नहीं है और न ही इतना ज्ञान है उनको, न ही वो क्षमता है इतना सोचने के लिए। अच्छा काम करो, लेकिन अच्छा काम क्या होता है, परिभाषा क्या है अच्छे काम का? तो भी बोलते नहीं, दूसरों का भला करो, दूसरों को नुकसान मत पहुंचा, लेकिन दूसरों को भला करना नुकसान करना ये कैसा है, कौन बोल सकते हैं? जैसे किसी को प्रभुपाद भी ऐसे कहानी बताते हैं कई बार, छोटे घर में किसी बच्चे को एक बीमारी हो गई और डॉक्टर ने बोला था कुछ अमुक प्रकार के वस्तु नहीं खाना, तो बड़े भाई ने तो थोड़ी दया की उसके ऊपर, बहुत दया करके उसको जब वो बच्चा मांग रहा था उसको खिला दिया और उसकी बीमारी ज़्यादा बिगड़ गई, तो माँ ने वो बड़े बच्चे को डांट दिया। तो वो बड़ा बच्चा क्या सोच रहा था कि मैं छोटे बच्चे का भला कर रहा हूँ, बेचारा वो रो रहा है, वो कुछ मांग रहा है खाने के लिए, मैं दे रहा हूँ उसको, तो मैं उसका भला ही कर रहा हूँ ना, वो कितने दुख में है, कितना रो रहा है, उसको दे रहा हूँ मैं। परंतु परिणाम हुआ क्या?
विपरीत
हो गया। क्यों? उसकी इच्छा अच्छी थी, इरादा अच्छा था कि मेरे छोटे भाई का मैं मदद करूँगा मैं, परंतु किस चीज़ के अभाव से परिणाम उल्टा हुआ? ज्ञान के अभाव से। तर मोठे भाव करे ते ज्ञान नव्हतं, तर लहान भावाने म्हटलं मला पाहिजे, रडायला सुरू केलं त्याने, अरे पाप 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 म्हणून त्याला दिलं आणि पापच झालं ते नाही। तर त्याचं नुकसान झालं की नाही? मग डॉक्टरला बोलावं लागलं आणि सगळं। तो उसको पता नहीं था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो अच्छे बुरे में अंतर जानने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो किस आधार पे हम कहते हैं कि केवल अच्छा काम करेंगे? तो इस प्रकार से लोग यूं ही बात करते हैं। तो आप हमको पहला प्रश्न क्या करना चाहिए? तुम्ही म्हणता चांगलं काम आम्ही करणार आहे, पण चांगल्या शब्दाची परिभाषा काय आहे? तुमच्यासाठी जे चांगलं आहे दुसऱ्यासाठी चांगलं नाही आहे, तुमच्यासाठी जे वाईट आहे दुसऱ्यासाठी वाईट नाही आहे। तर सगळ्यांनी आपापलं मतानुसार कार्य केलं पाहिजे का? असं होईल कधी? मग आम्ही कसं पुढचं तर्क काय करू आम्ही? हे पहिलं तर्क, ठीक आहे उत्तर, आणि आता हळू त्यांना वर उठवायचं, काय सांगायचं? बघा या देशामध्ये आम्ही राहतो, आता मी तय करतो की मी गाडी ह्या बाजूला रस्त्याचं चालवायला पाहिजे, आणि तुम्ही तुमचं विचार आहे की नाही नाही गाडी ह्या बाजूला दुसऱ्या बाजूला चालवायला पाहिजे, कोणी म्हणतो नाही ह्या असं उलट दिशेने चालवायला पाहिजे, तर आम्ही सगळे आपापल्या मतानुसार आम्ही गाडी चालवत आहे, असं चालेल का समाज? रस्त्यामध्ये काय होणार? अपघात होणार आहे नाही? तर कोणाचं नियम लागू होणार? हे शासनाने केलं तेच होणार की नाही? माझं मत काय आणि तुमचं मत काय त्याचं काय महत्व नाही आहे, की मी म्हणतो की लाल बत्ती असली तर पुढे जावा, हरी बत्ती असली तर थांबा, माझं मत आहे ते, पण माझं मत असलं तर ते काय किंमत? शासनाने जे नियम एक केले त्याच्यानुसार आम्ही सगळं चाललो तर काय होणार? सगळ्यांनी एकच नियम पालन केलं पाहिजे, नाहीतर प्रत्येक व्यक्तीने आपापल्या मतानुसार सगळं केलं तर काय होणार? दंगा होणार की नाही? तर त्यामुळे ज्या प्रकारे कुठच्याही देशामध्ये पण सर्वांचे मत भिन्न असतात, तरी सरकार किंवा शासन जे एक मत करते त्याचं पालन सर्वांनी केलं पाहिजे, तर एक सगळं शांतीपूर्वक सगळं चालणार। तसंच चांगलं काय आहे वाईट काय आहे, तुमचा विचार एक आहे, माझा विचार दुसरा आहे, यांचा विचार तिसरा आहे, त्यांचं चौथं आहे, जेवढे माणूस आहेत जेवढे व्यक्ती आहेत त्या सर्वांचं मत वेगळे वेगळं असतं, होय की नाही? दोन लहान मुलांचं पण बघा, बाळ लहान, त्यांचं पण मत वेगळं वेगळं असतं। तर तुमच्या मतानुसार हे बरं आहे, तुमच्या मतानुसार ते बरं आहे, आणि कोण म्हणतो नाही हे नाही हे बरं आहे, तर कसं निर्णय घेणार आम्ही? त्यामुळे कोणी एक असलं पाहिजे जो निर्धारित करणार की हे बरं आहे आणि हे वाईट आहे, आणि त्याचं पालन आम्ही केलं पाहिजे। समझ लो ना, तर ते कोण आहे जे सगळं निर्धारित करणार, ते नियम, नियम जे जोपर्यंत ज्यावेळी आम्ही नियम शब्दाचा प्रयोग करतो, आता आणि थोडं उठून घ्यायचं त्यांना वरच्या स्तरावर आणायचं, की ज्यावेळी आम्ही म्हणतो की नियम आहे, तर नियमाचा अर्थ काय आहे, की नियम बनवणारं कोणी व्यक्ती आहे, नियम आपोआप होते का, लाल बत्ती म्हणजे थांबा अचानक झाला का, आपोआप झालं का, नाही, कोणी तयार केलं ना ते नियम। तसंच संसारामध्ये पण जे नियम असतात त्याला बनवणारे पण लोक कोणी असतात। आणि जर आम्ही म्हटलं की बनवणारे कोणी नाही, कोणी नाही आहे, असं कसं होऊ शकतंय। आता आमच्या देशामध्ये पण किती नियम आहेत, आम्ही काय म्हणू शकतो का कोणी बनवले नाहीत म्हणून, असणार ना लोक असं म्हटलं तर आम्ही। तर तसंच जे बुद्धिमान लोक असतात ते पण हसतात ज्यावेळी कोणी म्हणतात की देव नाही आहे, कोणी नियम बनवणारे नाही आहे, कसं होईल हे। तर जर कोणी बनवणार आहे तर ते कोण आहे ते विचारलं पाहिजे की नाही, आणि त्यांनी का नियम असं बनवलं आहे, आणि कशासाठी हे पूर्ण सृष्टीचं सृजन झालं आहे। आता हळूहळू हळूहळू वर 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 जायला पाहिजे, आम्ही आमची विचारधारा जी आहे ती थोडी आणि जास्त वाढली पाहिजे, आणि शेवटी आम्ही पोहोचतो भगवंताकडे की आहे एक देव आहे जो आमच्या कर्माचं फळ आम्हाला देतात, नाहीतर फळ कुठून मिळेल। आता आम्ही एक बी टाकतो जमिनीमध्ये आणि त्याच्याने एक झाड उत्पन्न होत आहे, त्याच्याने फळ येतात, फुलं येतात, ते कसं होत आहे, आपोआप हे नियम सुरू झालं का, कोणीतरी बनवलं। तर ते म्हणतात प्रकृतीच परम आहे, पण प्रकृती परम आहे म्हणजे प्रकृतीला चालवणारा कोण, तर प्रकृतीचे नियम बनवले कोणी। त्यामुळे इकडे कर्म सिद्धांत असतो, म्हणजे काय, आम्ही जे कर्म करतो त्याचा एक परिणाम घेतो आमच्यावर। चांगलं कर्म केल्यानंतर चांगले फळ मिळतात, तर हे तय करणारे व्यक्ती आहेत, तर याला आम्ही कर्मसिद्धांत म्हणतो। निरीश्वरवाद कर्मसिद्धांत चालत नाही, कर्मसिद्धांत ज्यावेळी आम्ही म्हणतो त्याच्या पाठीमागे देव असलेच पाहिजे। हेच गोष्टी इकडे पृथ्वी महाराज म्हणतात, आणि त्याचं प्रमाण ते काय देतात, ते काय म्हणतात की ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। आणि त्याचं प्रमाण काय देतात पुढे, अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। जर कोणी आमचे कर्माचे फळ देणारे व्यक्ती नाही आहेत, तर पुढच्या जन्मामध्ये कोणी सुंदर होतोय, कोणी शक्तिशाली असतो, कोणी नसतो, तर हे भेद कसं काय उत्पन्न होत आहे। आपापल्या कर्मानुसार सगळं हे विविध प्रकाराचे लोक असतात, कोणी सुंदर आहे, कोणी कुरूप आहे, कोणी बुद्धिमान आहे, कोणाची बुद्धी कमी आहे, हे सर्व प्रकाराची विविधता का आहे इकडे। कारण आम्ही वेगवेगळे प्रकारचे कर्म करतो, आमची मानसिकता भिन्न भिन्न असते, आणि आमचे वेगवेगळ्या प्रकार कर्मांच्या अनुसार आम्हाला कर्म त्याचं फळ दे प्रदान करणारे पण एक व्यक्ती आहेत, त्यांना ओळखून घेतलं पाहिजे आम्ही। आणि हे सर्व काही का आहे, हे सगळं हे सृष्टीचं निर्माण त्यांनी का केलंय, आणि मी कोण आहे, हळूहळू हळू हे सगळं आम्हाला विचारून घेतलं पाहिजे, असं आम्ही हळूहळू त्या व्यक्तीला उचललं पाहिजे, व्यक्ती वरती। हा बरोबर आहे आदिराज प्रभू, बरोबर आहे की नाही। तर ज्यावेळी लोक म्हणतील कर्म फक्त चांगलं कर्म करायचं, कोणी व्यक्ती चांगलं कर्म पण म्हणत नाही, ते काय म्हणतात, कर्म करायचं फक्त. पण प्रभुपाद म्हणायचे गाढव पण कर्म करतोय. हा, फक्त कर्म करणे हे विशेष गोष्टी नाही आहे. तो डाकू आहे, चोर आहे, तो पण कर्म करतोय. फक्त कर्म करणे हे काही मनुष्य जीवनाची काही विशेषता नाही आहे. सगळे काय कर्म करतात, जनावर करतात, पक्षी करतात, आपापले काय उद्देशासाठी ते पण व्यस्त असतात. पण कशासाठी कर्म करतो, आमचा उद्देश काय आहे कर्म करायच्या पाठीमागे, ते महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा उद्देश काय आहे की भगवद्गीता तिसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंत काय म्हणतात, कर्म किसके लिए करने चाहिए,
कर्म
से बोलो कर्म कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर. इसका मतलब क्या है, यज्ञ मतलब कौन, भगवान विष्णु. भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करने चाहिए. तो जो व्यक्ति बोलता है मैं केवल कर्म करता हूँ, नहीं, केवल कर्म करना नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अन्यथा ऐसे नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, लोकोयम कर्म बंधन है, तो तुमको कर्म बंधन हो जाएगा, तुम फंस जाओगे. तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, फिर कर्म करोगे फिर फल मिलेगा, ऐसे कर्म और उसके फल के चक्र में अटक जाओगे, इसको कर्म बंधन बोलते हैं. और ऐसे करते करते फिर तुमको पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का अंत हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म ले लो, फिर पुनर्जन्म. इस प्रकार से कर्म बंधन से जन्म मृत्यु का भी बंधन उत्पन्न हो जाता है, और इसलिए हम ये दुख भरे सागर में अटक के पड़ते हैं. तो जिनको ये दुख भरे सागर से निकल के भगवान के धाम में जाना है, उनको भगवान के शरण में जाके उनकी भक्ति करनी चाहिए. बस सरल सी बात है. तो पृथु महाराज एक आदर्श राजा होने के नाते चाहते हैं कि वो प्रजा को सही रास्ते में ले चलें, ये सब झूठे सिद्धांतों में फंस ना जाए. यह तो मत तत्व पर जो भी रास्ता करो ठीक है, चलता है, ऐसे कभी होत नहीं. जर इकडे आम्हाला कोणी विचारलं आम्ही इकडे क्रॉसवर गेलो बेळगाव कसं जायचं, कुठचा रस्ता घ्या तुम्ही, असं पण जावा, तसं पण जावा, असं पण जावा, वरती पण जावा, बेळगाव पोचणार तुम्ही, असं होईल का कधी. तर बेळगाव पोचायला पण एक मार्ग आहे की नाही, त्या मार्गावर त्यांना दाखवलं पाहिजे. असं म्हटलं कुठे कुठे जावा, कसं चालेल, तसंच भगवंताकडे जायचं आहे, कुठची उपासना तर कुठचाही करा, असं हे पण करा, ह्यांची पण उपासना करा, त्यांची पण करा, ह्यांची पण करा, असं होईल. हां, तर थोडं आम्ही विचार केलं तर हे सगळे प्रचलित जे धारणा आहेत ना ते किती चुकीचे आहेत ते आम्हाला समजून येत आहे. लहान मुलाला पण हे लहान मूल पण बाल पण समजू शकेल, एवढी काही मोठी गोष्टी नाही आहे. मोठं दार्शनिक व्हायची गरज नाही आम्हाला हे सगळं लहान लहान गोष्टी समजायला. बरोबर आहे. आणि भगवद्गीतेमध्ये पण भगवान म्हणतात की वेगवेगळ्या प्रकाराची उपासना जी असते त्याची गती वेगळी वेगळी असते. काय कुठचा श्लोक आहे,
यंती देवव्रता देवन पितृनियंती पितृव्रता भूतानी अंति भूतेजा यंती मध्यान जिनो.
हाँ, म्हणजे काय, इसका अर्थ क्या है,
जो देवतांची पूजा करतोय तो देवतांच्या लोकात जातोय. यंती देवव्रता देवन पितृनियंती पितृव्रता, जो पितृलोका पितृंची पूजा करतो तो पितृलोकमध्ये जातोय. कृत्रिम यंत्र कृत्रिम होता है, भूतानी यंति भूतेचा, जो भूतांची पूजा करते तो भूत योनीमध्ये होतो आणि जो मला पूजा करतो तो माझ्याकडे येतो.
सरळ गोष्टी आहे ना, म्हणजे हे सगळे भिन्न भिन्न आहेत की नाही. कोण जो बेळगावचं तिकीट घेतो तो बेळगाव पोहोचणार, जो बेंगलोरचे तिकीट घेतो तो बेंगलोर पोहोचणार, नाही का? असं नाही की एक कुठचं तिकीट घ्यायचं आहे एकच आणि सगळे एकाच स्थानात पोहोचून जाऊ. असं आम्ही असं गेलो तसं गेलो तर आम्ही चोरलाला जाणार, असं गेलो तर आमट्याला जाणार, असं गेलो तर गोकुळधामला जाणार. वेगळेवेगळ्या देशानुसार वेगळेवेगळे आमची गती होणार, गंतव्य होणार. त्यामुळे भगवान श्री कृष्णांचा आश्रय घेतला तरच आम्ही भगवंताच्या धामामध्ये जाऊ शकणार. ते आमची गती आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. आणि अनेक लोक असे आहेत त्यांना माहीत पण नाही की जीवनाचं उद्देश काय, कुठे चालले काय आहे, नाही का? कर्म करो करो, क्यों कर्म करना है तुमको, नहीं माहीत को काय? प्रश्न आहेत का? हाँ
मारे जी, जैसे भगवान ने जो नियम बनाए हैं तो वो नियम के अनुसार सृष्टि चलती है, पर भगवान खुद, जैसे भगवद गीता में भी बोलते हैं कि खुद उसमें भगवान वो पर्सनली वो नहीं होते हैं,
लिप्त नहीं होते हैं,
भगवान उससे अलग रहते हैं और वो नियम चलते हैं भगवान ने जो सिस्टम बनाया है. पर भक्तों के लिए बोला जाता है कि भगवान स्वयं उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और सब करते हैं, तो वो कौन से, जैसे हमारे बहुत बार टेंडेंसी रहती है कि हम बोलते हैं जो हो रहा है भगवान की मर्जी की से हो रहा है, बट बहुत बार क्योंकि हम परिपक्व नहीं है तो हमारा मन हमको, जैसे कभी मंदिर नहीं गए तो भगवान की इच्छा होगी नहीं गए, पर वो हमारे मन की वो थी तो
नहीं, ऐसा नहीं. जो हम करते हैं वो हमारी इच्छा से हम करते हैं, जो होता है हमारे ऊपर वो भगवान की इच्छा से.
कई बार वो हमारे गलती के कारण कुछ हो रहा है लेकिन वो भी हम कब परिणाम भी भगवान को पड़ा देते हैं. मैंने अगर सेवा नहीं किया ढंग से कब परिणाम पड़ा, तो भगवान की इच्छा से.
भगवान की इच्छा से, परंतु हमको फिर पूछना चाहिए वो परिणाम आया क्यों, हमने किया परंतु भगवान ने हमसे दिलाया, भगवान ने हमने कर्म किए, कर्मों का फल हमें मिला, परंतु भगवान के माध्यम से हमको मिला. तो भगवान ये कर्म के फल प्रदान करने वाले भगवान हैं स्वयं, है ना. जैसे अचानक हमारे जीवन में कुछ बीत जाता है, कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, ये हमारे नियंत्रण के बाहर है, तो ठीक है कह सकते ये दैव हो गया इसमें. अब इस जीवन में या इस कर्म, अभी हमने कोई कर्म भले किया हो या ना किया हो, परंतु इस समय जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए. और अभी जो हमारे हाथ में कर्म है, स्वतंत्रता है, उससे हमारे भविष्य का भाग्य बनेगा. इसे जो हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर आ रहा है, वो हमारा भाग्य है, नसीब. और कोई प्रश्न?
वर्णाश्रम का अनुसार जो फल है वो हम अभी शास्त्र के अनुसार हम वो फल भगवान को भोग लगा सकते हैं या वो भोग कर सकते हैं, जो भी है, कम से कम वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से हम शुद्धिकरण का मार्ग हो जाते हैं. अभी कुछ भक्तों ने हमको प्रश्न पूछने की उनका जो वृत्ति है वर्ण ही है वो बहुत पापमय वृत्ति है, तो बहुत मतलब घृणी छान है. वो टैबलेट बनाने के लिए वो गाय का खून को लेके जाके टेस्टिंग करवाना है, उसके लिए उसको पगार मिलता है, नहीं तो एक मुर्गी का वो मुर्गी को ही लेके जाता है एवरी डे लेके आना जाना, तो पूरा ऐसा मतलब एकदम जिसमें बहुत घृणी काम है, मगर हम उनको मगर वो जपा कर रहा है, चार नियम पालन कर रहा है, वो भोग लगा के ही प्रसाद ले रहा है सब कुछ। तो अभी उसको वो काम पे हम उसको बंद करो उसको बोलना है, या
जब उसकी समझ इतनी हो जाएगी, उसका विश्वास हो जाएगा गीता भागवत में, तो उसको बताना चाहिए कि अभी ये सब काम छोड़ो, तुम दूसरा कोई तो नौकरी ढूंढ लो, दूसरा कोई व्यवसाय ढूंढ लो, क्योंकि ये सब पाप कर्म है, इसमें तुम अपना ये नहीं करो। क्योंकि हमारे जीविका का जो साधन है उसके भी शुद्धता का विचार होता है, शुद्धता या अशुद्धता का। यदि हम कोई पाप का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका जो फल है, जो धन है, वो भी पापग्रस्त हो जाएगा, पाप युक्त हो जाएगा, तो फिर उसके हम भागीदार हो जाएंगे, फिर उसका उसको हम खा रहे हैं ना, पाप का अनाज खा रहे हैं, तो इसलिए उसका परिणाम होगा हमारे ऊपर। इसलिए हमें शुद्ध जीविका को ढूंढना चाहिए, इसमें पाप वगैरह न हो। हमारे रेणु कृष्ण प्रभु है ना, पहले उनका वो बड़ा फैक्ट्री था मुर्गियों का, कुछ अंडे वंडे का कुछ उनको उनको देते थे, कुछ बनाते थे पोल्ट्री फीड्स, मतलब वो उनको खिलाते हैं ताकि फिर वो मुर्गियों को खिला के फिर उनको मारते थे। तो जब उनको पता चला, वो भक्त बने, फिर मेरे पास आए कि मेरा ये व्यवसाय है, तो मैं बहुत कम दिनों से आया हूँ, मैं बहुत नया भक्त हूँ, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये मेरा व्यवसाय सही नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? तो मैंने इतना ही बोला हाँ, कि ना कैसे बोल सकता हूँ। तो अगले हफ्ते में आए, उनका बड़ा कारखाना था, तो बहुत साल पहले की बात है, 20 साल से भी ज़्यादा। फिर अगले हफ्ते आए, बोले मैंने फैक्ट्री बंद कर दिया। अरे बंद कर दिया, कारखाना बंद? हाँ, क्योंकि पाप कर्म था ना, मैंने कारखाना बंद कर दिया। बंद कर दिया इतना बड़ा कारखाना, तो क्या होगा, कैसे करोगे, क्या चलाओगे? नहीं, मैंने सोचा अभी मैं गाय के लिए फीड्स बनाऊंगा। तो पूरा उसने पूरा व्यवसाय शक्ति विषय बदल दिया, और बोला बाद में, फिर थोड़े महीनों के बाद बोला ये सबसे अच्छा चल रहा है, पहले जो चल रहा था व्यवसाय उससे अच्छा ये चल रहा, क्योंकि उतने इतना भरोसा से, इतना विश्वास करके, श्रद्धा मन में थी, वो समझ में आए जैसे जिस दिन कि ये गलत है व्यवसाय, छोड़ दिया। तो यदि कोई भक्त भी है, भक्त बन रहा है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसे हमें समझाना चाहिए कि भाई अभी चलो छोड़ दो, अभी दूसरा कोई नौकरी व्यवसाय ढूंढ लो।
ये हो गया, हम कोई कोई ऐसा कुछ बुरा काम करते हुए हमको दान करते हैं, मतलब अभी कुछ पॉलिटिक्स में या उनको दारू बेच के उनको बहुत पैसा आता है, तो हम लोग को डोनेशन देते हैं। हमारा पार्टी था, वो आप उसमें आप पैसा नहीं देते, कुछ सब चोरी कुछ तो करके हम वो दान में देके हम लोग भगवान करते हैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा प्रोग्राम्स होता है उसमें हमको मिलता है, तो वो पैसा का प्रश्न हमको पूछते हैं कि आप लेना इतना लेना नहीं पैसा, तो ये कितना हद तक कम।
इसमें ऐसा है कि जब हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसका फल ले लेते हैं। यदि हमने भगवान के लिए इस्तेमाल किया तो भगवान उसको ले लेंगे, यदि हमने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर चिरोधारी हो जाएगा, अपने सर पे आ जाएगा सब। और ठीक है, ये पहली बात, परंतु ये भी एक विचार है, कि भगवान को भोग जो अर्पण किया जाता है वो भी धन यदि शुद्ध हो सबसे अच्छा है, परंतु समाज में तो सब लोग ऐसे हैं नहीं, और सबको भी भगवान की सेवा करने का अवसर कुछ देना चाहिए, तो कम से कम अपना धन तो भगवान की सेवा के लिए दे रहा है, उससे उसका शुद्धिकरण होगा धीरे धीरे। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं है इस तरह का धन स्वीकार करना, तो हमें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जैसे बहुत साल पहले जब गोकुलधाम के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, खरीदना है ये सब जमीन इत्यादि, तो एक दूसरे शहर में किसी एक भक्त ने मुझे बोला कि एक बहुत बड़े उद्योगपति है और वो, मैं उनको जानता हूँ, और वो तैयार है आपके इसके गोकुलधाम के लिए पैसा देने के लिए। काफ़ी बड़ी रकम थी, लाखों में थी, वो देने के लिए तैयार है। तो आज मैं बहुत खुश हो गया, अच्छी बात है। मैंने पूछा कि क्या व्यवसाय है उनका, बोला शराब का कारखाना है। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े व्यक्ति है वो, शराब अपने कारखाने में बनाते हैं। तो हमने कहा अयो तो हमने कहा ये नहीं, तो नहीं चाहिए, उनसे बात मत करो। मैंने बोला अभी आगे, अभी नहीं बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा, तुम उनको सेवा में लगाओ, तुम जप करवाना शुरू करो उनको, उनको प्रसाद दे दो, घर में जाके उनका कीर्तन करो। हाँ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हम लोग उनका पैसा लेंगे तो वो हमारे सर पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए नहीं लेना अच्छा है। फिर भी प्रभुपाद बड़े कृपालु थे, लेते थे। जब प्रभुपाद जी ने पहले संस्था चालू की और एक छोटे से दुकान में नीचे बैठ के वो प्रवचन देते, वो दुकान उन्होंने किराए पे लिया था, छोटा सा दुकान था, और उसको उन्होंने सत्संग अपना मंडल भवन बनाया, तो वहाँ बैठ के वो कीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे, तो तरह तरह के लोग आते थे, और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए सस्ते से सस्ते जगह में उन्होंने किराए पे लिया। तो सस्ते के सस्ते जगह में कौन रहेंगे, किस प्रकार के लोग रहेंगे? तो जो लोग वो गांजा चरी सफेद पीने वाले लोग थे, हाँ, और जो शराब पी के सड़क पे गिर जाते, इस टाइप के सब नवयुवक थे उधर, वही लोग सब आते थे उनके प्रवचन में, क्योंकि वही लोग आसपास में रहते थे। लेकिन उनमें से बहुत लोग भक्त बन गए। तो हुआ ये एक बार कि एक शराब पीकर आदमी अंदर आ गया और प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, और ये पिया हुआ था। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या क्या सहन किया। तो वो सब लोग नवयुवक और युवतियाँ बैठी हुई थी, सब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, और ये गड़गड़ाता हुआ अंदर आ गया शराबी, और उसके हाथ में कुछ था टॉयलेट पेपर। विदेशों में क्या होता है, वो शौच के बाद पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कागज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तो गंदा आदत है, गंदी आदत है वो, अपने आप को शौच के पानी से ही स्वच्छ करना चाहिए, ये तो भारत में बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन पाश्चात्य देशों में देखो ऐसे विचित्र बात है कि वो कागज़ रखते हैं, उसको टॉयलेट पेपर बोलते हैं। जब भी मैं हमारे विदेश में जाता हूँ और भक्तों के घर में भी जाता हूँ, कभी कभी वहाँ रहना पड़ता है, एक दो बार ऐसे हुआ जो भारतीय मूल के भी हैं वहाँ भी शौचालय में वो लोग पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। स्नान के लिए है, बेसिन में है, लेकिन जहाँ शौच करते हैं वहाँ पानी के लिए कुछ ये नहीं है। तो फिर मुझे गुस्सा आया, तो बोले क्या है, आप लोग कितना भी नहीं जानते, आप लोग भी कागज़ इस्तेमाल करते हो, पानी का इंतजाम नहीं करते आप, तो ऐसा उनका है पद्धति। लेकिन ऐसे ही वो टॉयलेट पेपर ऐसा गोल गोल होता है रो, उसको लेकर वो आया सीधे प्रभुपा जी के पास, उनको दे आपके लिए उपहार लेके आए हैं दान दान देने के लिए। सारे भक्त लोग गुस्सा हो गए, है क्या करते हो तुम, ये टॉयलेट पेपर दे रहे हो प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि इसका कितना मासूम इच्छा उसका बहुत शुद्ध था। वो शराबी था लेकिन वो कुछ सेवा करना चाहता था, अब उसको क्या मालूम टॉयलेट पेपर खराब है सही है नहीं है क्या है। वहाँ पे वही लोग इस वैसे ही करते हैं ना सब लोग, तो जाके बड़े शुद्ध हृदय से देना चाहा। प्रभुपाद ने बड़े आराम से स्वीकार किया, सबको दूसरों को बिठाया, उसको धन्यवाद दिया, हाँ तो उसकी भक्ति शुरू हो गई। क्योंकि एक शुद्ध भक्त को उसने जाके भले टॉयलेट पेपर क्यों ना हो लेकिन अच्छे दिल से उसने जाके दिया कि आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के कभी कभी जो दान होते हैं ले सकते हैं, परंतु सीधे भगवान के लिए, उसका उपभोग हमें नहीं करना है। हाँ प्रभाव पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, इसलिए तो हम देखते हैं कि धाम में जितने भी ब्राह्मण हैं या सब दक्षिणा ले लेके क्या हालत हो जाता है उनकी, तपस्या नहीं करते हैं, मंत्र आदि या आध्यात्मिक शक्ति से वो अपना जो दक्षिणा मिलता है उसका पचन करने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, मंत्र जप तप तप जप चाहिए, वो नहीं करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ मुझे दक्षिणा दो बोल के करते हैं सब कुछ, तो भारी पड़ जाता है उनके लिए। इसलिए अपने लिए नहीं लेना चाहिए। पहले ब्राह्मण लिया करते थे लेकिन बहुत सरल लिया करते थे, थोड़ा 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 इधर उधर से ले लेते, तो असर तो पड़ता है। इसलिए हमें सीधा भगवान के लिए लेना चाहिए। हाँ उद्धव हरे हरि हाँ, जैसे मैंने कहा हम ले सकते हैं उनको भक्ति में लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो भगवान को अर्पण करके फिर सबको खिलाओ। देखिए शुद्धता के भी स्तर होते हैं। सबसे शुद्ध क्या है अवस्था के उगाने वाला भक्त हो, फसल काटने वाला भक्त हो, और फिर पकाने वाला भक्त हो, अर्पण करने वाला भक्त हो, और सब लोग अच्छी चेतना से करें, तो ऐसा हो तो एकदम बढ़िया, सबसे उत्तम क्वालिटी गुणवत्ता का आहार हो जाएगा वो। लेकिन कभी कभी हम बाहर के लोग उससे अनाज आदि ले लेते हैं, ठीक है, उतना उतनी उन्नत श्रेणी की नहीं होती है फिर ये सब चीज़ें, तो थोड़ा कम लेवल का होता है। इसलिए गोकुल धाम में हमें प्रयास करना चाहिए अपनी सब्जियां उगाना, अपना अनाज उगाना, है ना, सब अपना करना, ताकि भक्तों के द्वारा करने से ये सब शुद्ध रहेगा। लेकिन कोई भक्ति भाव से दे रहा है, ठीक है, चलो भगवान को अर्पण करो। ठीक है, हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गोकुल धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।